దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయం ఉదీరయే నష్ట ప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్య దేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరతుషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంక్షన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
हरे कृष्णा. तो हम लोग मध्य लीला श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 12वें अध्याय के 73वें पयार को पढ़ेंगे.
तीन जन पाशे प्रभु हासिया कहिला गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागिनिला. तीन जन पाशे प्रभु हासिया कहिला गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागिनिला. तीन जन पाशे प्रभु हासिया कहिला गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागिनिला. तीन जन पाशे प्रभु हासिया कहिला गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागिनिला. तीन जन पाशे प्रभु हासिया कहिला गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागिनिला. तीन जन पाशे प्रभु हासिया कहिला गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी
माताजी
तीन जन पाशे प्रभु हासिया कहिला गुंडीचा मंदिर मार्जन
तीन जन पाशे तीन व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रभु महाप्रभु ने हासिया मुस्कुराकर कहिला कहा गुंडीचा मंदिर मार्जन गुंडीचा मंदिर को धोने की सेवा सेवा मांगी नीला मांगी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब ये तीन आ गए तो महाप्रभु ने उनसे गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की अनुमति मांगी। तात्पर्य यह गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 मील उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है। रथ यात्रा उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ अपने मूल मंदिर से गुंडीचा मंदिर को जाते हैं और वहां 1 सप्ताह विश्राम करते हैं। 1 सप्ताह के बाद वे अपने मूल मंदिर में वापस आते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करने वाला राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम गुंडीचा था। प्रामाणिक शास्त्र में भी गुंडीचा मंदिर के नाम का उल्लेख मिलता है। अनुमान है कि गुंडीचा मंदिर का क्षेत्रफल 1 क्यूबिट लगभग 1.5 फुट के बराबर माना जाता है। मुख्य मंदिर भीतर से 36 क्यूबिट गुणे 30 क्यूबिट है और कीर्तन भवन 32 क्यूबिट गुणे 30 क्यूबिट है। हरे कृष्णा। तो आज परम पावन गुंडीचा मंदिर मार्जन के महोत्सव पे हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के 2 प्यारों में गुंडीचा मंदिर मार्जन की लीला प्रारंभ हुई, जहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रथमे ही काशी मिश्रे प्रभु बोलाई ल पड़ीचा पात्र सार्वभौमे बोलाई यानी ल। श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा के पूर्व पहले काशी मिश्रा पोड़ीछा पात्र वहां का मंदिर का अधिनायक और सार्वभौम भट्टाचार्य इन तीनों को अपने पास बुलाया और उनसे हंस करके उनसे गुंडीचा मंदिर मार्जन की सेवा मांगे नीला। महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन की सेवा मांग लिया। तो यहां से श्री चैतन्य चरितामृत में 73वें प्यार से लेकर के 136 प्यार तक मध्य लीला के 12वें अध्याय में गुंडीचा मंदिर मार्जन की पूरी लीला का व्याख्यान किया गया है। तो ये गौरांग महाप्रभु की अद्भुत कृपा है जो हमें उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने का एक अवसर प्राप्त होता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक गीत में कहते हैं, गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलोतार हृदय निर्मल भेलोतार गौरांगेर दुती पदा जार धन संपदा से जाने भक्ति रस सार से जाने भक्ति रस सार। जिन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों को अपना लक्ष्य बना लिया वे ही वास्तव में भक्ति रस के सार को जानते हैं। और ये गौरांग महाप्रभु की लीलाएं विशेष करके नवदीप और जगन्नाथपुरी में जो महाप्रभु ने लीलाएं की हैं, इनका श्रवण गौरांगेर मधुर लीला जार कर्ण प्रवेशीला, जिनके कानों में प्रवेश करती हैं हृदय निर्मल भेलोतार, उनका हृदय निर्मल हो जाता है, ऐसा श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो इस गुंडीचा मंदिर मार्जन की लीला यह भी हृदय को निर्मल करने वाली लीला है। यहां पर इस लीला में यदि हम इस पूरी लीला पर विचार करें तो पूरी लीला में हम इसे दो पक्ष, इस लीला का दो पक्ष देख सकते हैं। एक पक्ष है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु इस लीला का स्वयं आस्वादन कर रहे हैं, अपने आस्वादन के लिए यह लीला कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए सारी लीला का आस्वादन करने के लिए ये लीला कर रहे हैं श्री जगन्नाथपुरी में। और दूसरा पक्ष है भक्तों को शिक्षा देने के लिए। तो यह दो पक्ष है श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का। जगन्नाथपुरी में रहते हुए श्रीमान महाप्रभु अनेक लीलाएं संपादित करते हैं, लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो केवल और केवल महाप्रभु अपने आस्वादन के लिए करते हैं, और कुछ लीलाएं भक्तों को कुछ शिक्षा प्रदान करने के लिए। और यह गुंडीचा मंदिर मार्जन की लीला श्रीमान महाप्रभु के दोनों पक्षों को प्रस्तुत करती है। एक स्थान पर महाप्रभु अपना आस्वादन कर रहे हैं इस गुंडीचा मंदिर मार्जन के द्वारा, और दूसरे स्थान पर श्रीमान महाप्रभु दूसरों भक्तों को अनर्थ निवृत्ति के द्वारा हृदय को निर्मल करके, जैसे कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी मंदिर का मार्जन कर अनर्थों को निवृत्त करके भगवान श्री कृष्ण के लिए वह उपयुक्त स्थान बनाता है, उसी प्रकार श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन के द्वारा श्रीमान महाप्रभु यह शिक्षा देते हैं कि हमें भी अनर्थों को हटाकर अपने हृदय से उसे स्वच्छ करके भगवान श्री हरि के स्थापना के लिए अपने हृदय को निर्मल बनाना है। तो यह दो पक्ष है भगवान की लीलाओं का। तो यदि पहले पक्ष पर विचार किया जाए कि श्रीमान महाप्रभु यह लीला अपने आस्वादन के लिए करते हैं, कैसे, तो इसके लिए हमें श्रीमान महाप्रभु के तत्व को समझना पड़ेगा। श्रीमान महाप्रभु का तत्व क्या है? श्री आदि लीला के मंगलाचरण में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृति रहलादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानो अपि पुरी भुवा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। तो श्री चैतन्य चरितामृत को प्रारंभ करते हुए श्रीमान महाप्रभु की लीलाओं को पहले बताने से पहले श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमान महाप्रभु के तत्व का वर्णन करते हैं। महाप्रभु हैं कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो वो कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर अहलादिनी शक्तिरस्मात्। जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रणय की विशेष कृति है, कृष्ण प्रणय विकृतिर, और जो अहलादिनी शक्ति है, वे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण एकात्मानो अपि पुरी भुआ, जो पहले एक थे और श्री वृंदावन में आकर के देह भेदम गतौ तौ, वह दो देह को प्राप्त हुए, वह एक आत्मा दुई देह धरी श्री राधा और कृष्ण वृंदावन में, अब वही राधा और कृष्ण एकात्मानो अपि पुरी भुआ देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अधुना अभी वे प्रकट हुए हैं, तद द्वयम चैक्यम आप्तम, वे दोनों अब फिर से एक हो गए। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? नौमी कृष्ण स्वरूपम, वे साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन उन्होंने राधा भाव और राधा द्युति से सुवलित, से सुसज्जित होकर के स्वयं भगवान कृष्ण जब राधा भाव और राधा द्युति श्रीमती राधा रानी की कांति से सुसज्जित होकर के जब एक रूप में प्रकट होते हैं, तो वह है श्री चैतन्य महाप्रभु का तत्व। तो यहां श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमान महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, नौमी कृष्ण स्वरूपम, लेकिन उन्होंने राधा भाव और राधा द्युति श्रीमती राधा रानी की कांति को स्वीकारा। अब प्रश्न उठा कि श्रीमान महाप्रभु ने इस कांति को क्यों स्वीकारा, तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में एक लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, अंक स्थिते पि दैतः किमपि प्रलाप है। एक बार श्री कृष्ण इस वृंदावन धाम में श्रीमती राधा रानी के साथ विराजमान थे, विराजमान होते हुए वे एक साथ थे, लेकिन श्रीमती राधा रानी में एक स्वसंवेद्य दशा प्राप्त हो गई। प्रेम विवर्त में श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ बैठी हैं, लेकिन बैठी होते हुए भी वह श्री कृष्ण से विरह का अनुभव करने लगती हैं। और इस दशा को श्री रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि में इस दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, यह स्वसंवेद्य दशा है। स्वसंवेद्य दशा का अर्थ जहां अपने होने का भी होश ना हो, जहां श्रीमती राधा रानी स्वयं को भी भूल जाती हैं और श्री कृष्ण का विरह अनुभव करने लगती हैं, ऐसा उत्कृष्ट प्रेम जब अंक स्थिते भी श्री कृष्ण वही विराजमान थे लेकिन फिर भी प्रलापे वहां प्रलाप करने लगी श्रीमती राधा रानी, रोने लगे, विलाप करने लगे, तो इस दशा को देख करके श्री कृष्ण के हृदय में उस स्वसंवेद्य दशा का अनुभव करने की हृदय में एक इच्छा जागृत हो जाती है। और यह दशा ऐसी कि इसका अनुभव, इसका अर्थ ही है, स्वसंवेद्य का अर्थ है जो स्वयं के द्वारा ही जाना जा सके। जो व्यक्ति इसका अनुभव करेगा वही इस दशा का अनुभव वास्तविक रूप में कर सकता है, उसके अतिरिक्त कोई जान नहीं सकता, यह स्वसंवेद्य है। इसलिए उस दशा का अनुभव करने की लालसा लेकर श्री कृष्ण राधा भाव और राधा द्युति इन दोनों को स्वीकार लेते हैं। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसके अगले श्लोक में मंगलाचरण में कहते हैं, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशी वा नैव स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशी वा मदीयः सौख्यम चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् मद्भावाद्य समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। तो श्री कृष्ण के हृदय में जब यह लालसा हो गई कि मैं उस उत्कृष्ट श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, जो आश्रय जनित प्रेम है, श्री कृष्ण विषय है और श्रीमती राधा रानी आश्रय है, तो जो प्रेम श्रीमती राधा रानी के हृदय में विराजमान है वह प्रेम श्री कृष्ण नहीं अनुभव कर सकते, क्योंकि वो विषय है। जैसे मिसरी बनकर के मिसरी का अनुभव नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण जो रस स्वरूप है, रसो वही सह, उनका अनुभव वास्तव में पूर्ण अनुभव, पूर्ण आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती हैं। इसलिए उसकी लालसा उत्पन्न हो गई और इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी के श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो, श्रीमती राधा रानी की प्रणय महिमा कैसी है, यह पहला श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का कारण। दूसरा, श्री राधा या प्रणय महिमा कीदृशो वा नैव, और स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः, मेरा ऐसा क्या मधुरिमा है, मेरी ऐसी क्या मधुरिमा है जिसका आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती हैं, यह दूसरा कारण श्री कृष्ण का श्रीमान महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का। और सौख्यम चास्य मदनुभवतः कीदृशम वेत्ति लोभात, लोभ के कारण श्री कृष्ण यह सोचने लगे कि श्रीमती राधा रानी जब मेरा अनुभव करती हैं तो उन्हें कौन सा ऐसा सुख प्राप्त होता है जिसके कारण वह स्वयं को भी भूल जाती हैं और प्रेम विवर्त में स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त होकर के ऐसे उत्कृष्ट प्रेम का अनुभव करती हैं, उत्कृष्ट सुख का अनुभव करती हैं। इस लोभ के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु उस सची माता के गर्भ समुद्र में मानो चैतन्य चंद्र प्रकट हो गए, ऐसा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो यह है श्री चैतन्य महाप्रभु का तत्व और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का कारण। इसलिए श्री कृष्ण जब इस लोभ को प्राप्त करते हैं कि मुझे श्री राधिका के उत्कृष्ट प्रेम का अनुभव करना है, तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। राधा भाव और द्युति से सुवलित सुसज्जित होकर के श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। तो वह प्रेम है कैसा, तो इसके विषय में श्री प्रबोधानंद सरस्वती श्रीमती राधा रानी के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं, वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु अति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु मे हृदय केली सिंधु। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती जब उस प्रेम का वर्णन करने लगे तो उन्हें शब्द प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो जब किसी कवि को उपमा देते समय कोई शब्द प्राप्त ना हो, जब उसकी महिमा का वर्णन करते समय उसकी सीमा की प्राप्ति ना हो, तो वह कवि कह देता है सिंधु। जैसे हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण की करुणा कितनी, जब करुणा का अनुभव करके एक भक्त यह सोचता है कि कितनी करुणा, उसका विचार नहीं कर पाता, उसका अनुभव करके यह सोचता है कि पता नहीं इतनी बड़ी करुणा, इतनी करुणा जिसका कोई अंत नहीं, वह अनंत करुणा है, इसलिए कहता है सिंधु। इसी प्रकार श्री प्रबोधानंद सरस्वती अपने श्री राधा रस सुधा निधि में कह रहे हैं, अनुराग कृपैक सिंधु, सब कुछ सिंधु है, श्रीमती राधा रानी के प्रेम वह सिंधु के समान है। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, उनकी विदग्धता सिंधु, उनका अनुराग रस सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, वात्सल्य सिंधु उनका वात्सल्य सिंधु। तो श्रीमती राधा रानी की प्रेम सिंधु के समान है, जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता, जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रबोधानंद सरस्वती तो कहते हैं, प्रेमोल्लासैक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा। यदि कोई कहे कि सिंधु की भी कोई सीमा होती है, सिंधु का भी तट होता है, तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं प्रेमोल्लासैक सीमा, यह ऐसा प्रेम है, ऐसा सिंधु है जिसका कोई, जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रेमोल्लासैक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा सौंदर्यस्यैक सीमा किमपि नव वयो रूप लावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा, लीला माधुर्य सीमा स्वजन परम कारुण्य औदार्य सीमा श्री राधा सौख्य सीमा साराधा सौख्य सीमा जयति रति कला केली माधुर्य सीमा। यहां सब कुछ सीमा, यहां किसी की सीमा नहीं, यह पराकाष्ठा का प्रेम है। तो ऐसे प्रेम को श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के ऐसे प्रेम को जब अपने हृदय में रखने की लालसा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, तो वह अमृत समुद्र, वह सिंधु रूपी अगणित जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे प्रेम को जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने हृदय में धारण करते रहे, तो मानो जैसे कोई घड़े में रखा हुआ दूध, एक बड़े घड़े में रखा हुआ दूध यदि किसी छोटे पतीले में डाला जाए तो क्या होगा, छोटा पतीला पहले भरेगा और भरने के बाद उसमें से दूध बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे प्रेम को अपने हृदय में धारण करते हैं, तो वह श्री कृष्ण के हृदय को पहले भरता है, उसके बाद तरंगायित होकर के उच्छलित होकर के वही प्रेम श्वेद कंप अश्रु और वैवर्ण के रूप में प्रकट हो जाता है। यह है श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप। तो यह स्वरूप श्री जगन्नाथपुरी में यह स्वरूप प्राप्त होता है, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र को देख करके यमुना की भावना कर लेते हैं, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के उपवनों को देख करके वृंदावन की भावना कर लेते हैं, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु बालू के टीले को देख करके गिरिराज जी की भावना करके पुकारने लगते हैं, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानंतनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पाणीय सूय वसकंदर कंद मूले। तो यह है श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा, जिसका आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसे प्रेम को प्राप्त कर श्री कृष्ण मानो विह्वल हो उठते हैं और निरंतर उनके अश्रु से निरंतर अश्रुधारा, उनके आंखों से निरंतर अश्रुधाराएं, उनका श्वेद कंप वैवर्ण, उनके शरीर से रक्त श्राव होता है उस श्रीमती राधा रानी का प्रेम का अनुभव करके। तो यह है श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, हरि भक्ति करम हरि नाम धरम, हरि भक्ति करम हरि नाम धरम, कर जाप्य करम हरि नाम परम, नयने सततम प्रणयाश्रुधरम, प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। प्रणमामि शचीसुत गौरवरम, प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। इसलिए ऐसे उत्कृष्ट प्रेम, स्वसंविद्ध दशा का जो प्रेम था श्रीमती राधा रानी के हृदय में विराजमान, जब वह श्री चैतन्य महाप्रभु, जब श्री कृष्ण उसे अपने हृदय में धारण करते हैं, तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। यह है श्री चैतन्य महाप्रभु का तत्व। और जब ऐसे प्रेम को श्री कृष्ण धारण करके महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, तो उनके स्वभाव में परिवर्तन देखा जाता है। वही श्री कृष्ण जो वृंदावन लीला में त्रिभंग ललित होकर के सबको आकर्षित करे हुए, त्रिभंग ललित होकर के टेढ़े खड़े होते हैं, वही श्री कृष्ण जब श्री नवद्वीप में राधा रानी के प्रेम को लेकर के प्रकट होते हैं, तो वे सीधे खड़े हो जाते हैं। वही श्री कृष्ण जो नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम नव नीरद निंदित कांति धरम होते हैं, वही श्री कृष्ण जब नवद्वीप में राधा रानी के कांति को धारण करके प्रकट होते हैं, तो वो गौरवर्ण के हो जाते हैं। वही श्री कृष्ण जो चंचल शिरोमणि है, जो लंपट शिरोमणि है, मानो इस वृंदावन धाम में अनेक अनेक गोपियों के साथ विहार करते हुए यहां वृंदावन में कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, वहीं श्री नवद्वीप में जब वे आते हैं और श्री जगन्नाथपुरी में आते हैं, तो वे चंचल शिरोमणि परम गंभीर सन्यासी वेश के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जहां वे स्त्री शब्द का नाम भी नहीं लेते, प्रकृति कह के पुकारते हैं। यह है स्वभाव में परिवर्तन। वही श्री कृष्ण जो वृंदावन लीला में चिकोटी काटकर, जब उन्हें माखन प्राप्त नहीं होता तो बच्चों को चिकोटी काटकर रुलाते हैं, वही श्री कृष्ण जो वृंदावन लीला में गोपियों को विरह वेदना के द्वारा रुलाते हैं, वही श्री कृष्ण जब नवद्वीप में और श्री जगन्नाथपुरी में उस प्रेम को लेकर हृदय में प्रकट होते हैं, तो वे स्वयं रोने लगते हैं। वही श्री कृष्ण जो इस व्रज लीला में, जिनका शास्त्र वर्णन करता है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जैसे नचाए से तैछे करे नृत्य, जिन बांध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, वे सुर असुर नाग मुनि सबको अपनी कर्म की डोरी के बांध करके सबको अपने अनुसार नचाते हैं, वही श्री कृष्ण जब इस नवद्वीप में और जगन्नाथपुरी में उस प्रेम को लेकर के हृदय में प्रकट होते हैं, तो वे स्वयं नाचने लगते हैं। यह है स्वभाव में परिवर्तन। वही श्री कृष्ण जो वंशी ध्वनि के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित करते हैं इस व्रज लीला में, वे जब श्रीमती राधा रानी के प्रेम को आस्वादन करने के लिए नवद्वीप में प्रकट होते हैं और वह वंशी जब मृदंग के रूप में प्रकट होती है तो उस मृदंग के ताल को सुन करके वे स्वयं नाचने लगते हैं। और वही श्री कृष्ण जो भगवद गीता में अनेक अनेक वचन कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वदा हम औषधम मंत्रो हम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, ऐसे शब्दों का प्रकट करने वाले, अहम अहम कहने वाले वे श्री कृष्ण जब जगन्नाथपुरी और नवद्वीप में प्रकट होते हैं तो वे कहते हैं, नाहम विप्र न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्र नाहम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यत निखिल परमानंद प्रेमामृताब्दिर गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। तो वही श्री कृष्ण, उनके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन देखा जाता है। और वही श्री कृष्ण जो इस व्रज लीला में माखन चोरी करते समय देवताओं के पूजन स्थान लीपे पोते स्थान को वहां मल मूत्र त्याग करके धृष्टता पूर्वक दूसरों को परेशान किया करते हैं, वे जब श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके जगन्नाथपुरी में आते हैं तो स्वयं मंदिर मार्जन करने लग जाते हैं। तो ये है श्री कृष्ण, जो वृंदावन के श्री कृष्ण है वे ही जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वे ही जगन्नाथपुरी में आए हैं। लेकिन चूंकि राधा भाव और राधा द्युति से सुवलित हो गए तो उनके स्वभाव में परिवर्तन देखा जाता है। और इसलिए पहला पक्ष, इस लीला का जो पहला पक्ष है कि श्री कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी के भाव का आस्वादन करने के लिए मानो जैसे श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण से मिलती हैं तो उस मिलन में वे उन्हें वृंदावन की ओर ले जाना चाहती हैं, उसी भाव में यह पूरी रथ यात्रा की लीला है। रथ यात्रा श्री कृष्ण को गुंडीचा मंदिर जो कि वृंदावन का स्वरूप है वहां ले जाना है। तो वही श्री कृष्ण राधा भाव को स्वीकार करके, श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके, वही कृष्ण राधा भाव को स्वीकार करके राधा रानी के भाव में कृष्ण को मानो मथुरा से, द्वारका से वृंदावन, कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा रहे हैं। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी इस भाव को प्रकट करते हुए उन्होंने एक श्लोक लिखा श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए, प्रियः सोयम् कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस् तथा हम साराधा तदिदम उभयो संगम सुखम तथा प्यंतह खेलन मधुर मुरली पंच मजुषे मनो में कालिंदी तट विपिनाये स्पृहयति। तो इस भाव को श्रीमान श्रील रूप गोस्वामी ने प्रकट किया कि यह वही कृष्ण वही है, यह स्थान भी बहुत अच्छा है। प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलते, कुरुक्षेत्र में हमारा मिलन भी हो रहा है और मैं भी वही श्री राधिका हूं। उभयो संगम सुखम, हमारा संगम भी यहां प्राप्त हो रहा है। तथाप्यंतः खेलन, यहां पर वन भी है, यहां पर वंशी की ध्वनि भी मानो वंशी भी पकड़ा दी जाए श्री कृष्ण को, लेकिन फिर भी मनो में कालिंदी विपिन स्पृहयति, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। मेरा मन, श्रीमती राधा रानी कह रही है, मेरा मन उस कालिंदी, उस यमुना के तट पर जो वन है उसकी स्पृहा करता है। और इसी भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव को गुंडीचा मंदिर ले आते हैं और इसी भाव के कारण, इसी भाव का आस्वादन करते हुए मानो श्री कृष्ण का स्वागत करना है वृंदावन में तो मानो गुंडीचा मंदिर मार्जन के द्वारा श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु मानो वृंदावन की कुंजों को तैयार कर रहे हैं। यह है श्री चैतन्य महाप्रभु का आस्वादन पक्ष इस लीला के द्वारा। और दूसरा पक्ष, दूसरा पक्ष है शिक्षा का पक्ष। श्री चैतन्य महाप्रभु इस लीला के द्वारा भक्तों को शिक्षा भी प्रदान करते हैं। वह शिक्षा क्या है? वह शिक्षा है कि जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन कर श्री जगन्नाथ देव के लिए वह सिंहासन तैयार कर रहे हैं जहां श्री जगन्नाथ देव आकर के विराजमान होंगे, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि एक भक्त को अपने हृदय रूपी मंदिर का भी उसी प्रकार मार्जन करके, अनर्थों की निवृत्ति करके श्री कृष्ण के लिए अपना हृदय उपयुक्त बनाना चाहिए। यह है शिक्षा पक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु का। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आस्वादन पक्ष में तो राधा भाव का आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा पक्ष जो हमारे लिए अत्यंत उपादेय है उसमें गुरु स्वरूप में श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर मार्जन, श्री विग्रहाराधन नित्यनाना, मंदिर मार्जन आदि का कार्य करके कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु के स्वरूप में, आचार्य के स्वरूप में स्वयं आचरण करके सिखाते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को, एक भक्त को अपने हृदय का मार्जन करना चाहिए। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया, आपनी आचार्य प्रभु जीवे रह सिखाए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से जीवों को शिक्षा देते हैं। तो इस गुंडीचा मंदिर मार्जन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले तीन लोगों को बुलाया, काशी मिश्र को बुलाया, सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया और पोड़िछा पात्र को बुलाया जो वहां मंदिर का अध्यक्ष था। इन तीन लोगों को बुला करके श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तीन जन पाशे प्रभु हासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी लीला। तीनों जनों से हंस करके श्री चैतन्य महाप्रभु सेवा मांग लेते हैं। बहुत सुंदर शब्द है कि श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि सेवा मांग लेनी चाहिए। हम लोग सेवा मांगते नहीं है, हमें जबरदस्ती पकड़ाई जाती है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं श्री कृष्ण की सेवा मांग ली। और वहां पर जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सेवा मांगी तो पोड़िछा पात्र कहता है, महाप्रभु यह मंदिर मार्जन का कार्य आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आप इस कार्य को क्यों करना चाहते हैं? यह कार्य तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यह आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आप श्री जगन्नाथ देव के लिए उस मंदिर का मार्जन करें, तो आपकी इच्छा सर्वोपरि, हरि इच्छा सर्वोपरि। और चूंकि पोड़िछा पात्र को यह आज्ञा मिली हुई थी राजा के द्वारा कि महाप्रभु जो कहें उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसलिए जब स्वयं महाप्रभु कहे कि मैं मंदिर मार्जन करूंगा तो पोड़िछा पात्र मान गए, सार्वभौम भट्टाचार्य भी मान गए और श्री काशी मिश्र मान गए। और मंदिर मार्जन करने के लिए श्रीमान महाप्रभु ने आज्ञा दी कि 100-100 घड़े, अनेक घड़े और अनेक झाड़ुओं की व्यवस्था वहां की जाए। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया कि अनेक घड़ों और सम्मार्जनी की आज्ञा दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, किंतु घट सम्मार्जनी बहुत चाहिए, आज्ञा दे आजी सब इहा आनि दिए। आज्ञा दे करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक सम्मार्जनी, अनेक झाड़ुओं को और अनेक घटों को वहां ले आकर के उपस्थित कराया। और अगले दिन आर दिन प्रभाते लैया निजगण, श्री हस्ते सबार अंग लेपिला चंदन। सुबह उठ करके श्री चैतन्य महाप्रभु भोर के समय, प्रभात के समय अपने गणों को लेकर के सबको माला और चंदन अर्पित करते हैं। और माला चंदन अर्पित करके अब सब विचार कर रहे हैं कि आज कौन सा ऐसा दिवस है माला चंदन हमें भी अर्पित हो रही है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री हस्ते दिला सबारे एक एक मार्जन, सब गण लैया प्रभु चलीला अपनी। श्री हस्त में सबके, श्री चैतन्य महाप्रभु सब सुबह उठ करके झोल जप माला नहीं दिए, सब मार्जन ही दे दे कि सब लोग अब जा करके गुंडीचा मंदिर मार्जन करेंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन प्रारंभ करते हैं और मंदिर मार्जन करने के लिए सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु ही झाड़ू उठा करके झाड़ू मारना प्रारंभ कर देते हैं और इसके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं कि कैसे एक भक्त जो नेतृत्व कर रहा हो, जो अधिनायक के कर्तव्य को निभा रहा हो, उस अधिनायक को चाहिए कि वे सबसे पहले स्वयं सेवा को ग्रहण करे, दूसरों को सेवा बांट करके स्वयं ना भाग जाए। जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होना हुआ तो हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि श्री ब्रह्मा जी सारे देवताओं को उस क्षीर समुद्र के पास लेकर के आए। उन्होंने भगवान के वचन सुने कि मैं अवश्य अवतार लूंगा, मैं देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और तुम ऐसा करो कि सारे देवताओं को कह दो कि सब लोग जा करके नीचे देवता लोग भी मेरे परिवार में जाकर के अवतार लें। तो ब्रह्मा जी ने सबको सेवा बांट दी और स्वयं खुद सेवा नहीं ली है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि इसी अपराध के कारण, चूंकि उन्होंने स्वयं सेवा नहीं ली, इसी अपराध के कारण ब्रह्मा जी भ्रम में पड़ गए और उन्होंने श्री कृष्ण ने ब्रह्म विमोहन लीला संपादित की। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु यह एक और शिक्षा देते हैं यहाँ पर कि एक नेतृत्व करने वाले भक्त को, एक अधिनायक को चाहिए कि वह स्वयं सबसे पहले सेवा ले ले। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर मार्जन करना प्रारंभ करते हैं। झाड़ू लेकर के सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं मंदिर मार्जन करते हैं और एक बार झाड़ू लगाते हैं। जब पहली बार झाड़ू लगाते हैं तो तृण, जो धूल, जो कंकड़ आदि को इकट्ठा करके श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उत्तरीय वस्त्र में रख करके उसे बाहर फेंकते हैं। तो जब ऐसा सारे भक्त देखते हैं कि महाप्रभु स्वयं अपनी उत्तरीय वस्त्र को लेकर के सारे कंकड़ तृण को बाहर फेंक रहे हैं तो सब अपने अपने वस्त्रों को लेकर के उस तृण कंकड़ को लेकर के बाहर फेंकना प्रारंभ कर देते हैं। तो श्रीमान महाप्रभु यह एक और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि भक्त को सेवा में अत्यंत उत्साह रखना चाहिए। और यह भी एक श्रीमान महाप्रभु की यहां पर इस लीला में यह एक शिक्षा प्रदान की। फिर महाप्रभु एक बार तो मार्जन करते हैं, जो स्थूल कण होते हैं उनका मार्जन कर लिया श्रीमान महाप्रभु ने, लेकिन मार्जन करने के बाद फिर भी कुछ सूक्ष्म धूल के कण फिर भी रह जाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के दूसरी बार झाड़ू लगाते हैं वहां, और इसके द्वारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस क्रिया पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु यह शिक्षा दे रहे हैं कि एक भक्त को अपने अनर्थों की निवृत्ति में पहले तो स्थूल अनर्थों पर विचार कर लेना चाहिए और बाद में जब स्थूल अनर्थ हृदय से जाने लगे तो उसे सूक्ष्म अनर्थों पर भी विचार करना चाहिए। और उनका वर्णन करते हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 6 अनर्थों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि वे सूक्ष्म अनर्थ, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उन सूक्ष्म कणों को लेकर के मंदिर से बाहर कर रहे हैं, उसी प्रकार एक भक्त को कुटीनाटी यानी कपट, प्रतिष्ठाशा, काम, प्रतिष्ठा की आशा, कामनाएं, निषिद्धाचार, पूजा और जीव हिंसा, ये सब जो सूक्ष्म अनर्थ रहे, इन अनर्थों को भी भक्त को प्रयत्न पूर्वक उन्हें भी अपने हृदय से बाहर करना चाहिए। यह है श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा इस लीला के द्वारा। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु 2 बार झाड़ू लगाते हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन में। 2 बार झाड़ू लगाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अनेक अनेक घड़ों में जल भर करके सारे भक्तों को जल भर करके उस गुंडीचा मंदिर की दीवारों पर, उसके फर्श पर, छत पर, हरेक स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के द्वारा और स्वयं भी मंदिर मार्जन का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु एक और शिक्षा देते हैं कि कुछ कार्य सेवा के ऐसे होते हैं जिसमें प्रतिनिधान करना होता है, जिसमें व्यक्ति सारा कार्य स्वयं नहीं कर सकता। अब श्री चैतन्य महाप्रभु यदि अकेले जल भरने का कार्य करें, जल को उठा करके ले आने का कार्य करें, तो तो यह संभव नहीं था मंदिर मार्जन, यद्यपि स्वयं भगवान है वे कर सकते थे, लेकिन महाप्रभु ने सारे भक्तों को, कुछ भक्त घड़ा लेकर के सरोवर से जल ले आते, कुछ भक्त घड़ा लेकर के कूप से जल ले आते, और वह एक दूसरे को हरि हरि कहते हुए, हरि की ध्वनि करते हुए एक दूसरे को वह घड़ा दिया करते थे। अंत में जाकर के वह महाप्रभु के हाथ में पड़ता और महाप्रभु उससे, उस जल से गुंडीचा मंदिर का प्रक्षालन करते हैं। तो यहां पर सेवा में श्री चैतन्य महाप्रभु एक और शिक्षा प्रदान करते हैं कि सेवा में कई बार सारा कार्य अकेले नहीं किया जा सकता, उस कार्य के लिए अन्य भक्तों की भी सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए अन्य भक्तों का भी प्रतिनिधान और उनको अधिकारिता प्राप्त करा करके एक भक्त को सेवा, भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे हम भी आज कोई भी कार्य या सेवा करते हैं तो कोई एक व्यक्ति भगवान की विग्रह सेवा नहीं कर सकता, भोग नहीं बना सकता, उनका अर्चन नहीं कर सकता, तो अनेक अनेक भक्त मिल करके भगवान की सेवा करते हैं। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु यह शिक्षा प्रदान करते हैं। जब मंदिर का प्रक्षालन प्रारंभ हो गया तो श्री चैतन्य महाप्रभु के को जल ले आकर के भक्त जन दे रहे थे, तो एक भक्त महाप्रभु की लीला का वर्णन करते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक भक्त मंदिर मार्जन का कार्य अच्छे से नहीं कर रहे थे, तो महाप्रभु उसे देखकर कहते हैं, तुमी भाल करिया छ शिखाय अन्य रे, एई मत भाल कर्म से हो ये न करे। महाप्रभु व्यंग करते हुए उस भक्त से कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा सफाई कर रहे हो। वो भक्त जाकर के एक कोने में जाकर के बैठ जाता है। कई बार ऐसा होता है, हम भी सेवा में, सारे भक्त सेवा कर रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, हम भी कुछ इधर उधर झाड़ू कर दिए, हो गया, हमारी सेवा हो गई। तो इसी प्रकार एक भक्त था, तो महाप्रभु व्यंग करते हुए कहते हैं उस भक्त से कि तुम तो बहुत अच्छा कार्य करो, जाकर के सबको सिखाओ कैसे सेवा करनी चाहिए। तो वहां श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यंग करते हैं। तो एई कथा सुनिया सबे संकुचित हया, भाल मत कर्म करे सबे मन दिया। और इस बात को सुन करके सारे भक्त संकुचित हो गए कि अरे महाप्रभु देख रहे हैं कि हम किस प्रकार सेवा कर रहे हैं, और सब संकुचित होकर के भाल अच्छे प्रकार से सब लोगों ने सेवा करना प्रारंभ की। इस लीला का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक और लीला का वर्णन करते हैं कि महाप्रभु जब प्रक्षालन कर रहे हैं तो एक भक्त जल का घड़ा ले आ करके, कई भक्त जल का घड़ा ले आ करके महाप्रभु के चरणों में जल डाल देते, और चरणों में जल डाल करके दूसरे स्थान पर खड़े होकर के उस जल का पान करने लगते, महाप्रभु के चरणामृत का पान करने लगते। तो एक भक्त का वर्णन करते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, हे न काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरल, प्रभुर चरण युगे दिल घट जल। उस काल में एक सुबुद्धि, एक बहुत सरल वैष्णव, गौड़िया वैष्णव, वह प्रभु के चरण में युगे दिल घट जल, उसने घट से जल प्रदान किया, और जैसे घट से जल प्रदान किया, से ही जल लैया आपने पान कैला, ताहा देखी प्रभुर मने दुख रोष हैला। महाप्रभु जब इसको देखे तो उनके मन में अत्यंत दुख और रोष हो गया कि यह भक्त क्या कर रहा है। और यद्यपि गोसाई तारे हैया छे संतोष, धर्म संस्थापन लागी बाहिरे महारोष। यद्यपि महाप्रभु स्वयं भगवान है, वे अत्यंत प्रसन्न है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चरणामृत जल व भक्त आस्वादन कर रहा है, लेकिन बाहर से रोष प्रकट कर रहे हैं क्योंकि महाप्रभु धर्म संस्थापना के लिए आए हैं, और इसलिए उस पर रोष प्रकट करते हुए श्रीमान महाप्रभु शिक्षा लागी स्वरूप डाकी कहिल तहारे, एई देख तोमार गौड़ियार व्यवहारे। शिक्षा देने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोलते हैं कि ये देखो देखो तुम्हारा गौड़िया का व्यवहार देखो। भगवान के मंदिर में एक भक्त के चरण को स्पर्श करना, उसको जल देना और उसके जल का पान करना, यह महाअपराध है। तो महाप्रभु भक्त भाव में शिक्षा देने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुला करके कहते हैं कि इसे बाहर निकालो, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसे गले में हाथ डाल करके उसे मंदिर से बाहर कर देते हैं। यद्यपि वह भक्त सुबुद्धि सरल, बहुत सरल भक्त है, और महाप्रभु के मन में अत्यंत संतोष है, लेकिन महाप्रभु यह एक और शिक्षा प्रदान करते हैं कि यदि कोई भक्त को सम्मान दिया जा रहा हो तो भगवान के सामने उसे उस सम्मान को नहीं स्वीकारना चाहिए। या एक और शिक्षा प्रदान करते हैं महाप्रभु इस लीला के द्वारा। और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर मार्जन का कार्य पूरा करते हैं, और पूरे कार्य को करके श्रीमान महाप्रभु सारे बालू के कण धूल के कणों को इकट्ठा करते हैं, और इस पूरी लीला में श्रीमान महाप्रभु के द्वारा जितनी धूलि जितने कण प्राप्त हुए जितना कण उन्होंने इकट्ठा किया वह सब मिल करके भी सारे भक्तों ने जितना मिल करके इकट्ठे किया वह उससे ज्यादा हुआ श्रीमान महाप्रभु का जो धूलि कण था। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु इस लीला में इस यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि एक भक्त को अपने हृदय का भी मार्जन इसी प्रकार करना चाहिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद इसी अध्याय के 135वें पयार में अंतिम पंक्ति में श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर पंक्ति लिख रहे हैं जिसको मैं पढ़ता हूं यहां। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा गुंडीचा मंदिर की सफाई का संचालन हमें यह जताने के लिए किया गया कि किस तरह हृदय को स्वच्छ तथा शांत बनाकर भगवान कृष्ण का स्वागत किया जाए और बिना किसी उत्पात के उन्हें हृदय के भीतर बिठाया जाए। तो इस प्रकार इस लीला में अनेक अनेक शिक्षाओं को प्रकट करके श्रीमान महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन का कार्य प्रारंभ करते हैं। और दो पक्षों में, एक पक्ष श्रीमान महाप्रभु जहां श्रीमती राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करते हुए अपने अश्रु जलों से उस मंदिर का प्रक्षालन कर रहे हैं, और दूसरे पक्ष में भक्तों को शिक्षा प्रदान करते हुए श्रीमान महाप्रभु गुंडीचा मंदिर का प्रक्षालन कर अनर्थ निवृत्ति के लिए भक्तों को प्रेरित करते हैं। तो यहां हम इस कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।